वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो चूंकि आज भीष्म देव का आविर्भाव है तो आज पूरी चर्चा भीष्म देव के बारे में हम करेंगे। तो बहुत चर्चा है उनके बारे में। सबसे पहले तो प्रभुपाद ने जो चर्चा की है श्रीमद् भागवत में और सूत गोस्वामी चर्चा कर रहे हैं भीष्म देव के बारे में। शौनक आदि ऋषि सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अध्याय 9 में जो चर्चा हुई है तो उसको पहले हम करके इसके बाद फिर एक पुस्तक भक्ति विकास स्वामी ने लिखी है जय श्रील प्रभुपाद, तो इससे भी हम पढ़ेंगे भीष्म देव की तुलना प्रभुपाद से उन्होंने की है। प्रभुपाद की जो महानता है वो भी भीष्म देव के समान है, तो कुछ उसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो मेरे लेख हैं भगवद गीता पर उनमें भी भीष्म देव की चर्चा है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो ये अध्याय 9 है प्रथम स्कंद का, जिसमें कि भीष्म जी देह त्याग करते हैं भगवान कृष्ण की उपस्थिति में। जैसे आज तो आदर भाव है भीष्म देव का, लेकिन यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं उनके तिरुभाव की। तो पहली बात यह है कि उनका तिरुभाव तो आता ही नहीं हमारे वैष्णव कैलेंडर में, भीष्म जी का तिरुभाव तो आता ही नहीं है, इसलिए भी हम तिरुभाव की चर्चा भी आज के दिन ही कर सकते हैं और कोई दूसरा अवसर नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि वैष्णवों के आविर्भाव तिरुभाव में कोई अंतर नहीं है, है कि नहीं, इसलिए आविर्भाव के दिन भी उनके तिरुभाव की चर्चा की जा सकती है। क्योंकि उनके जो है आविर्भाव तिरुभाव दोनों ही दिव्य होते हैं। तो यहाँ पर दृश्य है कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि, कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है और युधिष्ठिर महाराज उस स्थान पर गए जहाँ पर भीषण नरसंहार हुआ था, जहाँ पर भीष्मदेव मरणासन्न होकर सरसैया पर लेटे थे। युधिष्ठिर क्यों गए भीष्मदेव के पास? क्योंकि वो भयभीत थे कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। इतना भारी जो नरसंहार हुआ है तो युधिष्ठिर अपने को दोषी मान रहे थे, इस कारण से गए हैं। इति भी कहा प्रजा द्रोहा सर्वधर्म ततो विनशनम प्रागान यत्र देव व्रतो पतन। तो इसमें सूत गोस्वामी कहते हैं देवव्रत जहां पर अपतत यानी गिरे, जिस स्थान पर भीष्म जी गिरे, मतलब एक ऐसा बिंदु था जहां की भीष्म जी अपने रथ से गिरे। भीष्म जी जब रथ में थे तो वो रथ तो एक स्थान में नहीं रहता था और बहुत दूर चलता था, आगे पीछे दाएं बाएं चारों दिशाओं में चलता था। लेकिन जब गिरे रथ से तो फिर वहां से हिले नहीं, फिर वहां से हिले नहीं। पूरा महाभारत युद्ध हुआ उसके बाद भी, लेकिन जो भीष्म जी का स्थान था वो नहीं बदला। जब उनके शरीर में पूरे शरीर में बाण भर गए, पूरा शरीर बाणों से भर गया, एक अंगुल भी जगह खाली नहीं रही उनके शरीर में, तब उन्होंने स्वयं अपने शरीर को गिराया और अच्छी तरह से सोच विचार के गिराया कि कहाँ उनको गिरना है, किस तरफ अपना स्थिर करना है। पूरी तरह से जो ना अपनी चेतना में थे और अपने बस में थे भीष्म जी, तो रथ से जब वो गिरे तो अपनी इच्छा से गिरे और उसी तरह से गिरे जिस तरह से वो चाहते थे, जिस दिशा में सिर करना चाहते थे, जिस दिशा में पैर करना चाहते थे, ऐसे ही गिरे भीष्म जी। तो उसी स्थान पर युधिष्ठिर महाराज गए, इसलिए सर्वधर्म विविधया संपूर्ण धर्मों को जानने की इच्छा से युधिष्ठिर आए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी राजा युधिष्ठिर को भीष्मदेव कर्तव्यों के संबंध में उपदेश देंगे, भीष्मदेव भी इस मर्त्यलोक से प्रयाण करते समय भगवान से अंतिम प्रार्थना करेंगे। तो ये सब भगवान की योजना है। क्या योजना है कि भीष्म जी उपदेश देंगे युधिष्ठिर महाराज को और साथ साथ भीष्म जी की प्रार्थना भी सुनना चाहते हैं भगवान। व्यक्तिगत रूप से भीष्म जी जो है कृष्ण से जो बात करना चाहते हैं तो भी भगवान की इच्छा है ना, इसलिए भगवान जो है यहां आए हैं। और इस प्रकार भौतिक कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भीष्मदेव को वरदान प्राप्त था कि वे इच्छा अनुसार देह त्याग कर सकते हैं, इसको कहते हैं इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था भीष्मदेव को, जब तक कि वो इच्छा ना करें तब तक नहीं मरेंगे। भगवान राम के राज्य में हर व्यक्ति ऐसा था, राम के राज्य में हर व्यक्ति ऐसा था, लेकिन यहाँ भीष्म जी एकमात्र ऐसे थे कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। और आप जानते हैं कि वरदान किसने दिया था उनको, उनके पिता शांतनु ने दिया था, है ना। और शांतनु जो उनके पिता थे उन्होंने क्यों दिया था, क्योंकि वो बहुत प्रसन्न हुए भीष्मदेव के त्याग से, बहुत बड़ा त्याग भीष्मदेव का। देखो वे जवान थे और उनके पिता जवान थे या जवानी को पार कर गए, जो भी हो, है ना, तो ये विवाहित नहीं थे और जवान थे, विवाह के योग्य थे और राज्य के योग्य थे, लेकिन अपने पिता की प्रसन्नता के लिए इन्होंने जीवन भर राज्य नहीं करने का भी व्रत ले लिया और जीवन भर विवाह नहीं करने का भी व्रत ले लिया। तो देवव्रत इनका नाम था, वैसे इनका नाम था वास्तव में देवव्रत, लेकिन फिर देवताओं ने इनको भीष्म नाम दिया। और इनकी जो प्रतिज्ञा है वो प्रसिद्ध हुई भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से। भीष्म का मतलब क्या है, भयानक। तो भीष्म जी हाँ बहुत भयानक व्यक्ति हैं इस मामले में, इनकी प्रतिज्ञा भी बड़ी भयानक है। तो यहां लिखा है, रूपा लिखते हैं और वे अपनी इच्छा से ही इस तरह सरसैया पर लेटे थे। इस महान योद्धा का इस प्रकार से निधन समस्त श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला था, अतः सारे लोग इस महात्मा के प्रति अपने प्यार सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने के लिए एकत्र हुए। उस समय युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ आए भीष्म के निकट। तो कैसे आए, स्वर्ण आभूषणों से आभूषित ऊंचे प्रकार के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर बैठ कर के आए और व्यास धौम्य जैसे जो पुरोहित हैं वो भी उनके साथ थे। कदापे भ्रातर सर्वे सदस्य स्वर्ण भूषित अन्वगच्छन् थैर्वेत्ता व्यास धौम्यादयस्तथा। भीष्म देव कैसे मालूम पड़ते हैं, आकाश से गिरे हुए देवता के समान, इतना तेज था उनके शरीर में। स्वर्ग के जो देवता है उनके शरीर में तेज होता है, है ना, उनके जो है शरीर में पसीना नहीं आता है और भूख प्यास का कष्ट नहीं होता है, उनके शरीर की छाया नहीं बनती जमीन में और जमीन को छोड़े भी नहीं है। देवता जब आते हैं पृथ्वी पर तो उनके पैर जमीन पर नहीं रहते, जमीन से थोड़ा ऊपर रहते हैं उनके पैर। तो भीष्म जी भी आकाश से गिरे हुए देवता के समान, क्योंकि आकाश से देवता आते हैं तो खड़े रहते हैं, गिरते तो नहीं है। यहाँ भीष्म जी गिरे हुए हैं तो अंतर केवल यही है कि ये गिरे हुए देवता के समान है, खड़े नहीं है, है ना, गिरे हुए हैं लेकिन हैं देवता के समान। एक कारण तो यह है देवता के समान क्यों है, जमीन को नहीं छू रहे, जमीन को नहीं छू रहे, है ना। जो बाण की नोक है, बाण सामने से आर पार हुए तो पीछे की तरफ बाण की नोक निकली है, तो बाण की नोक के ऊपर जो है ना वो लेटे हुए हैं, बाण की नोक जो है जमीन को छू रही है। बहुत पतला बिंदु होता है बाण का जो शरीर को आर पार करता है, तो वो बाण के जो तीखी नोके हैं उनसे ही जमीन को छू रहे हैं, बाकी जमीन को नहीं छू रहे हैं, इसलिए देवता के समान मालूम पड़ रहे हैं। और शरीर से भी जो तेज निकल रहा है ना, तो वो भी ऐसा नहीं है कि जब किसी के शरीर में खून निकलता है तो बहुत बुरा उसका रूप दिखाई पड़ता है, बहुत विकृत हो जाता है, लेकिन नहीं, वे जो है देवता के समान तेजस्वी लेटे हुए हैं, जमीन पर पड़े हुए हैं। तो उन्हें देख करके पांडव युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और छोटे भाइयों और भगवान कृष्ण ने भी उन्हें प्रणाम किया। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान मनुष्य की तरह आचरण करते थे, अतः उन्होंने भी मरणासन्न भीष्म देव को अपने को राजा युधिष्ठिर का छोटा भाई मानकर प्रणाम किया। युधिष्ठिर के पीछे पीछे भगवान कृष्ण भी भीष्म को प्रणाम करते हैं। और भीष्म देव को देखने के लिए कौन आए? ब्रह्मांड के जितने देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, वे सब एकत्र हुए भीष्म देव को देखने के लिए। ब्रह्मांड भर से देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि वहां एकत्र हुए, क्योंकि भीष्म जी का नाम जो है उस लिस्ट में है, ब्रह्मांड भर के जो है जो 12 महाभागवत हैं उस सूची में भीष्म जी का नाम है, है ना। तो भीष्म जी का जो निधन है ये कोई सामान्य घटना नहीं है। तत्र ब्रह्मर्षि यहां सर्वे देवर्षयश्च सप्तम राजर्षयश्च तत्रासन द्रष्टुम भरत पुंगवम। तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि ऋषि वे हैं जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा सिद्धि प्राप्त की है। ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धि कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वह राजा हो या साधु हो। भीष्मदेव स्वयं ब्रह्मर्षि थे और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। सारे ऋषि सतोगुणी होते हैं, वे सभी महान योद्धा की आसन्न मृत्यु का समाचार सुनकर वहां एकत्र हुए। तो आगे सुखदेव गोस्वामी और अन्य पवित्र पुरुष कश्यप, आंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए भीष्म का दर्शन करने के लिए। अन्य चामनयो ब्रह्मन ब्रह्मरातादयो मना शिष्य रूपेता आजगहुम कश्यपांगिरसादय। और भीष्म जी को क्या कहा जाता है? वसुत्तम। भीष्म जी का एक नाम है देवव्रत, है ना, और भीष्म तो दूसरा नाम है, और नाम क्या है? वसुत्तम। वसुत्तम का मतलब वसुओं में उत्तम। वसु कितने हैं? 8, 8 वसु हैं। तो वसु में उत्तम, 8 वसुओं में श्रेष्ठ भीष्म देव ने वहां पर इकट्ठे हुए महान शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत किया। भीष्म जी स्वागत कर रहे हैं, देखिए स्वागत किया, क्योंकि भीष्म देव देश और काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों के ज्ञाता थे। किस स्थान पर और किस समय किस व्यक्ति का कैसे स्वागत करना चाहिए जानते थे। तान समय तान महाभागान उपलब्ध वसुत्तम पूजिया मास धर्मज्ञो देश काल विभाग। वसुत्तम 8 वसुओं में से ये कौन से वसु हैं? द्यो नाम के वसु, द्यो नाम के वसु हैं जो सबसे छोटे हैं। उस द्यो नाम के वसु को वशिष्ठ मुनि का शाप प्राप्त हुआ जिससे ज्यादा समय तक उस वसु को पृथ्वी में रहना पड़ा और अविवाहित रहा। तो भीष्म जी को वसुत्तम कहा जाता है। लेकिन जीव गोस्वामी ने कहीं पर यह भी लिखा है कि भीष्म जी जो हैं अलग हैं और वो द्यो नाम का वसु वो भी उनके शरीर में था, तो वो द्यो नाम का जो वसु था वो तो साप भोग रहा था वशिष्ठ जी का कि वो जीवन भर अविवाहित रहेगा ना, तो उसके लिए कष्ट की बात थी। भीष्म जी महाभागवत उनके लिए थोड़ी कष्ट की बात थी कि वो उनका विवाह नहीं हुआ, है ना। तो भीष्म जी के शरीर में 2 आत्माएं थी, तो इनको जो है जानते हैं कैसे सम्मान करना चाहिए, हमें सीखना है कि कैसे किस समय किस व्यक्ति का कैसे सम्मान करना चाहिए। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि पटु धर्मविद भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार देश काल के अनुसार धर्म को समंजित करना चाहिए, देश और काल के अनुसार धर्म को समंजित करना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। सारे महान आचार्यों अथवा धर्मोपदेशकों या विश्व के सुधारकों ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों को समंजित करके ही अपने उद्देश्य की पूर्ति की। तो भीष्म जी ने उस समय स्वागत किया सबका, लेकिन वो उठ के बैठ नहीं सकते थे, हिल भी नहीं सकते थे, है ना। तो उन्होंने कैसे स्वागत किया, मन से स्वागत किया, आंखों के इशारे से और जो है वाणी के द्वारा इतने कह सकते थे। विश्व के विभिन्न भागों में तरह तरह की जलवायु और परिस्थितियां हैं, और यदि किसी को भगवान के संदेश का उपदेश करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातें समंजित करने में पटु होना चाहिए। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद ने भी 16 माला का नियम बनाया, है ना, 64 माला से 16 माला का नियम बना दिया। तो देश काल के अनुसार प्रभुपाद ने उसको समंजित किया है कि नहीं। भीष्मदेव इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश करने वाले 12 महापुरुषों में से एक थे, अतः वे ब्रह्मांड के कोने कोने से आए शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत और सम्मान अपनी मृत्यु से यहाँ पर पड़े पड़े कर सकते थे। कोई दूसरा व्यक्ति पड़े पड़े नहीं कर सकता है सम्मान, है कि नहीं। विश्व में उनका स्वागत सम्मान स्वयं उठकर कर पाने में शरीर से समर्थ थे, क्योंकि उस समय वे ना तो घर पर थे ना सामान्य रूप से स्वस्थ थे, लेकिन उनका मस्तिष्क पूरी तरह कार्य कर रहा था और वे हार्दिक मृदु वचन बोल सकते थे, इसीलिए वे सभी आगंतुकों का ठीक से सत्कार कर सके। मनुष्य मन से वाणी से तथा कर्म से अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। वे भली भांति जानते थे कि समुचित स्थान पर उनका किस तरह उपयोग करना चाहिए, अतः शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी उन्हें लोगों का सत्कार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इससे प्रभुपाद की मुझे याद आती है कि प्रभुपाद का भी जो है जब मतलब अंतिम समय था तो डॉक्टरों का एक दल प्रभुपाद की देखभाल करने के लिए आया था, या प्रभुपाद से मिलने के लिए आए थे, जो भी हो। तो प्रभुपाद की तो इतनी खराब हालत थी, भीष्म जी की तरह जैसे पूरे शरीर में बाण चुभे हैं, है ना, उनके शरीर में मांस ही नहीं था बिल्कुल, मांस और खून था ही नहीं। तो वो जो है ना बहुत कष्टदायक स्थिति होती है पूरे शरीर में, है ना, जैसे कि बाण मतलब चुभे हो पूरे शरीर में, ऐसी स्थिति थी। लेकिन ऐसी स्थिति में जैसे भीष्म जी स्वागत कर रहे हैं देवर्षि और ब्रह्मर्षि राजर्षियों का, ऐसे उन डॉक्टरों का प्रभुपाद भी स्वागत कर रहे थे और कह रहे थे कि वृंदावन आने में आप लोगों को कुछ असुविधा तो नहीं हुई। भीष्म जी भी पांडवों के कष्ट की चिंता करते हैं कि पांडवों को कितना कष्ट प्राप्त हुआ, जबकि वो इतने कष्ट में है, हैं? ऐसे उन डॉक्टरों के लिए भी प्रभुपाद चिंता कर रहे हैं कि आप लोगों को जो है ठीक से कमरा मिल गया ठहरने के लिए कि नहीं मिला, कोई असुविधा तो नहीं हुई आने में, हैं? तो इस तरह से भीष्म जी की तरह प्रभुपाद जी भी महान है। फिर भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन है तो भी अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं, ऐसे भगवान भीष्म देव के समक्ष खड़े हुए थे। और चूंकि भीष्म देव उनकी महिमा से परिचित थे अतः उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। कृष्णम तदत प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम युधिष्ठिरं पूजयामास मायोपात विग्रहम। पास ही महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन पितामह के प्रेम से अभिभूत थे, ये देखकर भीष्मदेव ने उन्हें हार्दिक बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंद के अश्रु थे क्योंकि वे प्रेम और स्नेह से आप्लावित थे। भीष्मदेव आनंद के अश्रु बहा रहे हैं। आनंद के अश्रु क्यों बहा रहे हैं? क्योंकि धर्म की विजय हुई, पांडु पुत्रों की विजय हुई, युधिष्ठिर को साम्राज्य प्राप्त हुआ, इसलिए भीष्म जी आनंद के अश्रु बहा रहे हैं। पांडुपुत्रानुपासीनां प्रसय प्रेम संगतां अभ्यात स्थानुरागास्त्रेर अंधीभूतेन चक्षुषां। तात्पर्य प्रभुपाल लिखते हैं, जब महाराज पांडु का निधन हुआ तो उनके सारे पुत्र छोटे थे, अतः स्वाभाविक था कि वे राज परिवार के गुरुजनों के विशेष रूप से भीष्म देव के लाल प्यार में पलते हैं। हाँ ठीक है ना, पांच पांडवों के जो पिता हैं पांडु, उनका देहांत हो गया है बचपन में ही, तो भीष्म जैसी है उनको लाल प्यार मिला है। बाद में जब पांडव बड़े हो गए तो वे धूर्त दुर्योधन उसकी टोली द्वारा ठगे जाने लगे। यद्यपि भीष्म देव जानते थे कि पांडव निर्दोष हैं और उन्हें व्यर्थ ही कष्ट दिए जा रहे हैं, फिर भी राजनीतिक कारणों से वे पांडवों का पक्ष नहीं ले पा रहे थे। भीष्म जी कुछ कारणों से विवश थे, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के सामने वचन दिया था कि जो भी व्यक्ति राजगद्दी में बैठेगा, राज सिंहासन पर बैठेगा, उसका हर प्रकार से वो संरक्षण करेंगे। इस कारण से वे जो है ना कोई नियम बदल नहीं सकते थे। आते रूपा लिखते हैं, अंतिम समय में जब भीष्म देव ने महाराज युधिष्ठिर समेत अपने यशस्वी पौत्रों को अपने बगल में बैठे देखा तो महायोद्धा पितामह अपने प्रेमाश्रु रोक न सके। उनकी आंखों से स्वतः अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। उन्होंने अपने परम पवित्र पौत्रों द्वारा भोगे गए महान कष्टों का स्मरण किया। निश्चय ही वे सर्वाधिक संतुष्ट थे, क्योंकि दुर्योधन के स्थान पर युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठने जा रहे थे, इसीलिए उन्होंने उन सबों को बधाई दी। और भी रूपा लिखते हैं कि भीष्मदेव धर्म की विजय देखकर निश्चय ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासनारूढ़ देखकर प्रसन्न थे, यद्यपि वे स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे। यद्यपि वो स्वयं उसके उनके विरुद्ध लड़े हैं, लेकिन प्रसन्न किस बात से हैं कि उनकी विजय हुई। भीष्म जैसा महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सका, क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते थे। भीष्म जी की इच्छा भगवान की इच्छा में पूर्ण मिली थी, समर्पित थी है? तो भगवान दिखाना चाहते थे क्या कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता। साक्षात पाप क्या है? दुर्योधन। और साक्षात पुण्य क्या है? युधिष्ठिर। चाहे कोई कुछ भी करना चाहे, भीष्मदेव भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, क्योंकि भगवान ये दिखलाना चाह रहे थे कि भीष्म जैसे योद्धा भी विपक्ष से लड़ने पर जीत नहीं सकता। भगवान की इच्छा है क्या? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करना है ना, तो शिक्षा स्थापित करना चाहते हैं भगवान कि कोई कितना भी महान हो अगर पाप का साथ देता है तो हारेगा। तो क्योंकि भगवान ही दिखलाना चाह रहे थे कि भीष्म जैसे योद्धा भी विपक्ष से लड़ने पर जीत नहीं सकता। और भीष्म से संबंधित और भी भीष्म जी कहते हैं कृष्ण के बारे में क्या कहते हैं, सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी, कृष्ण सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी कृपा करके वे मेरे समक्ष अब आए हैं जब मैं मरने वाला हूं। ये कितनी कृपा है भगवान की, क्योंकि मैं उनका नम्य भक्त हूं, तथापि एकांत भक्त पश्य भूपानुकंपितम यन्मे सून त्यजता साक्षात कृष्णो दर्शन मांगतः। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भीष्म जी की मृत्यु सैया के निकट भगवान कृष्ण इसीलिए प्रकट हुए क्योंकि भीष्म उनके अनन्य भक्त थे। अर्जुन का कृष्ण से शारीरिक संबंध था क्योंकि भगवान उनके ममेरे भाई लगते थे, और अर्जुन कृष्ण के फुफेरे भाई लगते थे। अर्जुन कृष्ण के फुफेरे भाई और कृष्ण अर्जुन के ममेरे भाई लगते थे। ये मामा के लड़के हैं उनके और वो उनकी बुआ के लड़के हैं, किंतु भीष्म से उनका ऐसा कोई संबंध ना था, भीष्म से कोई संबंध नहीं था, अतएव आकर्षण का कारण आत्मा से घनिष्ठ संबंध था। फिर भी चूंकि शारीरिक संबंध अधिक सुखद और स्वाभाविक होता है, इसीलिए भगवान को जब महाराज नंद या यशोदा का पुत्र कहा जाता है या राधा रानी का प्रेमी कहा जाता है तो वे अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान के साथ इस प्रकार का शारीरिक संबंध होना भी भगवान की प्रेममय सेवा की आदान प्रदान का अन्य गुण है। भीष्मदेव इस दिव्य माधुर्य भाव से अवगत हैं, इसलिए भगवान को विजय सखे, पार्थ सखे आदि कहकर संबोधित करते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने भीष्म जी की जो है प्रशंसा की है। और एक तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, सेनापति भीष्मदेव यहां पर विशेष प्रकार के योग का उल्लेख कर रहे हैं जिसे भक्ति योग कहते हैं। और वे भाग्यशाली थे कि भौतिक शरीर को त्यागने के पूर्व अपने समक्ष साक्षात भगवान को देख रहे थे, अतः उन्होंने अगले श्लोकों में इच्छा व्यक्त किया है कि भगवान उनकी दृष्टि के समक्ष ही रहें। अब भीष्म जी क्या कहते हैं, कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं कि ये भगवान अपने चतुर्भुज रूप में अभी हैं, कृष्ण भीष्म जी के सामने खड़े हैं, चतुर्भुज रूप में है, चतुर्भुज रूप, और नेत्र कैसे हैं, उगते हुए सूर्य की भांति। उगता हुआ सूर्य कैसा होता है, लाल। तो कृष्ण के जो नेत्र हैं बहुत सुंदर, उगते हुए सूर्य की भांति नेत्र हैं, और सुंदर रीति से सजाए हुए मुस्कुराते कमल के समान मुख वाले मेरे भगवान, आप उस क्षण तक यही मेरी प्रतीक्षा करो। किस क्षण तक, जब तक मैं अपना ये भौतिक शरीर छोड़ ना दूं, आप प्रतीक्षा करो। सदैव देव भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथस चतुर्भुजान। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, भीष्मदेव जानते थे कि भगवान कृष्ण आदि नारायण हैं, उनके आराध्य देव चतुर्भुज नारायण थे। भीष्म जी के आराध्य कौन है, चतुर्भुज नारायण। लेकिन वे यही जानते थे कि ये चतुर्भुज नारायण भगवान कृष्ण के पूर्ण अंत हैं। परोक्ष रूप में उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हों। वैष्णव सदा ही आचरण में विनीत होता है, यद्यपि यह शत प्रतिशत निश्चित था कि शरीर को त्याग कर भीष्मदेव वैकुंठ में जा रहे हैं, तो भी विनीत वैष्णव के रूप में उन्होंने भगवान का सुंदर मुखड़ा देखना चाहा। वैकुंठ में तो हमेशा भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन तो भी विनम्र भक्त के रूप में वे भगवान का मुखड़ा देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहीं इस शरीर को छोड़ने के बाद ये भगवान का दर्शन ना भी कर पाए। वैष्णव इस तरह की भी संभावना करता है कि मुझे नरक में भी अगर जाना पड़े तो अभी तो भगवान का नाम ले लूं, बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा, है ना। अगर मुझे नरक में जाना पड़ा तो फिर भगवान का दर्शन करने का, भगवान का जो है नाम लेने का, भक्तों का संग करने का मौका नहीं मिलेगा, तो अभी लाभ उठा लूं इस अवसर का, भक्त ये भी संभावना करता है। तो भीष्म जी भी संभावना करते हैं कि उनको अगर मौका ना मिला आगे। वैष्णव को कभी गर्व नहीं होता, यद्यपि भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में प्रवेश करने की गारंटी देते हैं, भगवान की गारंटी लें तो भी भक्त जो है ना अपने पर विश्वास नहीं करता है। यहां पर भीष्म कहते हैं, जब तक मैं अपना शरीर नहीं त्यागूं, इसका अर्थ है कि ये महान सेनापति अपनी इच्छा से शरीर त्याग करेगा, वह प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं है। वे इतने शक्तिशाली थे कि वे जब तक चाहे थे अपने शरीर को बनाए रख सकते थे। ये वर उन्हें अपने पिता से प्राप्त हुआ था, उनकी क्षति के भगवान अपने चतुर्भुज रूप में उनके समक्ष रहें, जिससे वे उनका ध्यान कर सकें और समाधि दशा को प्राप्त हो लें। तब उनका मन भगवान का चिंतन करके पवित्र हो जाए, फिर वे कहीं भी जाएं इसकी उन्हें परवाह नहीं रहेगी। शुद्ध भक्त कभी भी भगवत धाम जाने का इच्छुक नहीं रहता, वह तो भगवान की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है। यदि भगवान उसे नरक भी भेजना चाहें तो वह समान रूप से तुष्ट होता है। शुद्ध भक्त की तो एक ही इच्छा रहती है कि वह सदा भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहे। भीष्म देव की इतनी इच्छा थी कि उनका मन भगवान के चिंतन में लीन रहे और इसी तरह मर जाएं। शुद्ध भक्त की यही सर्वोच्च अभिलाषा होती है। फिर शुद्ध गोस्वामी कहते हैं, भीष्म देव के इस प्रकार आग्रह पूर्वक बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न सिद्धांत पूछे। युधिष्ठिर सदा करणे शयानम सरपंजरे अपृच्छन् विविधान धर्मान ऋषीणां चानुसृण्वताम्। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भीष्म देव ने आग्रह पूर्व स्वर में बोलते हुए महाराज युधिष्ठिर को आश्वस्त किया कि वे शीघ्र ही प्रयाण करने वाले हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे धर्म के सिद्धांतों के बारे में उनसे पूछें। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे अनेक महर्षियों की उपस्थिति में भीष्म देव से प्रश्न पूछें, जिससे यह सूचित होता है कि यद्यपि भीष्म देव जैसा भगवत भक्त सामान्य पुरुष की भांति रहता है, किंतु बड़े बड़े मुनियों से यहाँ तक कि व्यास देव से भी श्रेष्ठ होता है। दूसरी बात यह है कि भीष्म देव उस समय न केवल सरसैया पर लेटे थे, अपितु अपनी इस अवस्था के कारण वे अत्यंत पीड़ित थे। ऐसी अवस्था में उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये सिद्ध करना चाहते थे क्या कि उनके शुद्ध भक्त सदैव आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शरीर और मन से पूर्णतया स्वस्थ रह रहे हैं। अतएव भगवत भक्त किसी भी अवस्था में रहकर जीवन को सही दिशा बताने में समर्थ होता है। युधिष्ठिर भी चाहते थे कि वहां पर उपस्थित व्यक्तियों से जो भीष्म देव से भी अधिक विद्वान लगते थे ना पूछकर वे अपनी समस्याओं का समाधान किससे करें किससे करें। कुछ लोग आंखें बंद किए हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, और कुछ लोग आंखें खोले हैं तो भी उनके कान बंद हैं। जिनकी आंखें बंद हैं उनके तो कान बंद है ही हैं, और कुछ लोगों की आंखें खुली हैं लेकिन तो भी कान बंद हैं। ये दूसरे चाहते थे कि वे उनसे ना पूछकर अपनी समस्याओं का समाधान किससे करें। भीष्म किससे परीक्षा होती है कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। ये सब चक्रधारी श्री कृष्ण की योजना थी, क्योंकि वे अपने भक्त की महिमा को संस्थापित करना चाहते थे। यदि धर्म संस्थापना है, धर्म स्थापना है, धर्म की स्थापना है, भक्त की महिमा की स्थापना करना, ये भगवान का एक कार्य है, भगवान का अवतार इसलिए होता है। भक्त की महिमा की स्थापना करना चाहते हैं भगवान, उनके अवतार का ये प्रयोजन है। पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसकी अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध बने, पिता चाहता है, क्या चाहता है आपको खड़े हो जाना चाहिए, जो विनम्र भक्त हैं और नींद आ रही उनको खड़े हो जाना चाहिए, ये विनम्रता का चिन्ह है कि आप खड़े हो जाए। भगवान बलपूर्वक घोषित करते हैं कि उनके भक्तों की पूजा उनकी पूजा से अधिक मूल्यवान है। तो और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन अब मैं दूसरी पुस्तक खोल रहा हूं, ये भक्ति विकास स्वामी की है, इसका नाम है क्या, जय श्रील प्रभुपाद। तो इसमें वो तुलना कर रहे हैं भीष्म देव से अपनी वृद्धावस्था में। अब सुनिए ध्यान से, प्रभुपाद की तुलना भीष्म देव से कर रहे हैं। अपनी वृद्धावस्था में भीष्म देव उत्साहित थे और युद्ध के योग्य थे, युद्ध करने के लिए योग्य थे, तो प्रभुपाद ने भी युद्ध किया है। और भीष्म देव जी शस्त्रों से युद्ध करते थे और प्रभुपाद शास्त्रों से युद्ध करते, है ना। तो वृद्धावस्था दोनों की, भीष्म देव जी की वृद्धावस्था, प्रभुपाद की वृद्धावस्था। और अपने शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने पूर्ण रूप से सरसैया पर भी धार्मिक सिद्धांतों पर प्रवचन दिया। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद भी अपनी वृद्धावस्था में युद्ध के लिए भारत से बाहर गए और अंत में उन्होंने धार्मिक शिक्षाएं दी अपने मृत्यु सैया पर। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण, अब देखो कई तुलनाएं हैं भीष्म से कर रहे हैं, एक तुलना तो वृद्धावस्था की है, वृद्धावस्था दोनों की, और दूसरी तुलना युद्ध में उत्साह है दोनों का, योग्यता भी, युद्ध करने में योग्यता भी। अकेले भीष्म देव जो है ना महारथी है, चाहे जितनी संख्या हो शत्रुओं की एक साथ युद्ध करते हैं, और प्रभुपाद भी अकेले महारथी, विदेशों में हर जगह अकेले महारथी प्रभुपाद जी थे, और जितने भी आए सब कुछ ना प्रभुपाद हराते थे। और फिर तीसरी तुलना की है, अंतिम क्षण में मृत्यु के समय भीष्म देव ने प्रवचन दिया कृष्ण कथा, और प्रभुपाद ने भी मृत्यु के समय भी कृष्ण कथा पर प्रवचन दिया। और तुलना है कि जब भगवान जब भीष्म देव शरीर त्याग रहे थे तो भगवान स्वयं उपस्थित थे उनके सामने, किस रूप में, चतुर्भुज रूप में। तो प्रभुपाद भी जब शरीर त्याग रहे थे तो भगवान उपस्थित थे, किस रूप में? हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में भगवान उपस्थित थे। पता है कैसे?
नाम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं
है। सब भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे उस समय, अखंड कीर्तन कर रहे थे। आप लोगों ने वो चित्र फिल्म देखी होगी ना, योर एवर वेल विशर, तो कितना फाइनल लेसन, अच्छा हाँ फाइनल लेसन है, तो भक्त लोग कितना उत्साह से कीर्तन कर रहे थे, है ना। तो ये प्रभुपाद को प्रिय था भगवान का रूप, हरे कृष्ण महामंत्र। भीष्म देव को प्रिय था भगवान का चतुर्भुज रूप, और प्रभुपाद को प्रिय था भगवान का ये महामंत्र रूप, है ना। तो भगवान महामंत्र के रूप में प्रकट हुए प्रभुपाद के सामने। अब मेरे लेख भी हैं जिनमें कि बीच बीच में भीष्म देव की चर्चा हुई है, तो दुर्योधन द्रोणाचार्य से बोल रहा है गीता के पहले अध्याय के आठवें श्लोक में, तो भीष्म का नाम ले रहा है। तो द्रोणाचार्य का पहले नाम लिया दुर्योधन ने, भगवान ये आप है हमारी सेना में, और फिर भीष्म का नाम लिया। तो भीष्म जी ने दुर्योधन से उस घटना का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया था। महाभारत युद्ध के पहले भीष्म जी ने एक घटना का बहुत विस्तार से वर्णन किया था दुर्योधन से, जिसमें अम्बा से विवाह न करने के कारण उनको अपने ही गुरु से युद्ध करना पड़ा। कौन? परशुराम। अम्बा से विवाह न करने के कारण उनको अपने गुरु से युद्ध करना पड़ा, परशुराम जी से युद्ध करना पड़ा। और यह घटना भीष्म जी ने विस्तार से बताई, किसको? दुर्योधन को। किस समय? महाभारत युद्ध के पहले। अपने कमजोरी उन्होंने बताई कि कमजोरी मेरी यहां पर है और कहीं कमजोरी नहीं है, मतलब अगर वो मारे जाएंगे तो उस कारण से मारे जाएंगे। तो अपनी एक कमजोरी बताई उन्होंने दुर्योधन को। इस युद्ध में भीष्म की परशुराम पर विजय हुई थी तथा इसी घटना के कारण परशुराम जी ने यह प्रतिज्ञा की थी कि भविष्य में भी किसी भी क्षत्रिय को युद्ध की शिक्षा नहीं देंगे। परशुराम जी जब हार गए भीष्म से, बोले आगे से कान पकड़े, क्षत्रियों को युद्ध की शिक्षा नहीं देंगे। ये लोग युद्ध की कला सीख लेते हैं फिर हरा देते हैं, है? आगे से ब्राह्मणों को सिखाऊंगा, मैं क्षत्रियों को नहीं सिखाऊंगा। भीष्म का नाम, भीष्म नाम का अर्थ भी है भयानक, अर्थात जो व्यक्ति युद्ध में अत्यंत भयानक दिखाई देता हो वह भीष्म है। दुर्योधन को आशा थी कि भीष्म उसकी सेना में भयानक रूप से युद्ध का प्रदर्शन करेंगे। भीष्म जी का नाम श्रीमद् भागवत में 12 महाजनों में आया है। यमराज यमदूतों को बतलाते हैं कि ये 12 व्यक्ति भगवान तथा भगवान के नाम की महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। भीष्म जी ने युधिष्ठिर महाराज के राष्ट्र यज्ञ में शिशुपाल तथा अन्य श्री कृष्ण के विरोधी राजाओं के सामने श्री कृष्ण की महिमा का विस्तार से वर्णन किया। भीष्म जी ने शिशुपाल के सामने ही शिशुपाल के पूर्व जन्म के संबंध में बतलाया, उसके पूर्व से भी पूर्व जन्म के संबंध में बतलाया था कि ये रावण था पिछले जन्म में, उसके भी पहले कि हिरण्यकश्यप था, शिशुपाल के मुंह पर ही बताया। सबके सामने बताया ये शिशुपाल जो है ना, ये कौन है, पिछले जन्म का, पिछले से पिछले जन्म का कौन है। महाभारत में अनेक स्थलों पर भीष्म जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते पाए जाते हैं। जब अर्जुन के बाणों से भीष्म जी का संपूर्ण शरीर विद्ध हो गया तथा उनके शरीर में एक अंगुली की भी जगह ना थी जहां अर्जुन का बाण ना छिदा हो, तो समय भी उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि वे उन योगियों को प्राण त्यागने की विधि सिखाना चाहते थे जो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, फिर भी योगाभ्यास तथा ब्रह्मचर्य का पालन करके उत्तरायण में शरीर छोड़ते हैं। भीष्म जी की को आवश्यकता नहीं थी कि इस विधि के द्वारा वो शरीर छोड़ें, लेकिन उन योगियों को जो शुद्ध भक्त नहीं है लेकिन उत्तरायण में शरीर छोड़ते हैं तो कैसे छोड़ना चाहिए, तथा वैकुंठ लोक की प्राप्ति करते हैं जहां जाकर पुनः इस संसार में आना नहीं पड़ता। जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आया तब तक भीष्म जी ने युधिष्ठिर महाराज को महाभारत युद्ध के बाद अनेक प्रकार के धर्मों का उपदेश दिया, जिसके अंतर्गत विष्णु सहस्त्र नाम भी है। ये बहुत प्रसिद्ध है विष्णु सहस्त्र नाम। महाभारत में दो चीजें बहुत प्रसिद्ध हैं, एक तो भगवद गीता और दूसरा विष्णु सहस्त्र नाम, अर्थात विष्णु के हजार नामों का भी वर्णन आता है। भीष्म जी का चरित्र अगाध है, श्री कृष्ण के महान भक्त के रूप में उनका जितना भी वर्णन किया जाए उतना ही कम है। और पूर्व काल में भीष्म जी ने काशीराज की 3 कन्याओं का अपहरण किया था, उनका स्वयंवर था। स्वयंवर में क्या था कि कन्या जिसको चाहे उसके गले में माला डाल दे, लेकिन इन्होंने अपहरण कर लिया 3 कन्याओं का। समस्त राजाओं और उनकी सेनाओं को अकेले परास्त करके 3 कन्याओं का अपहरण किया। उन 3 कन्याओं में से अंबिका के पुत्र थे कौन? 3 कन्याओं में अंबिका के पुत्र थे कौन? धृतराष्ट्र, अंबिका के पुत्र। 3 कन्याएं थी अंबा, अंबिका और अंबालिका। तो अंबा से तो विवाह हुआ नहीं किसी का और वो भीष्म की शत्रु बन गई। अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ, ठीक है। और विदुर जी दासी के पुत्र थे। तो अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और धृतराष्ट्र का ही पुत्र दुर्योधन था। हाँ, फिर दुर्योधन ने कहा कि भीष्म के द्वारा सुरक्षित सेना, हमारी सेना सुरक्षित है। तो यहां पर भीष्म के द्वारा सुरक्षित सेना का एक और अर्थ है, भीष्म जब विवाह के योग्य थे तथा अपने पिता शांतनु के अकेले पुत्र थे, उस समय प्रजा यही चाहती थी कि अपने पिता के बाद भीष्म ही क्या बने? राजा बने। परंतु जब एक मछुआरे ने अपनी कन्या सत्यवती का विवाह भीष्म के पिता शांतनु के साथ करने से इसलिए मना कर दिया कि सत्यवती से जो पुत्र होगा वह राजा नहीं बन सकता, तो भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की कि वे जीवन भर राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे तथा सत्यवती से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे राजा बनाएंगे। इस पर भी जब मछुआरा संतुष्ट नहीं हुआ तथा उसने कहा कि तभी भीष्म तो राज्य नहीं करेंगे परंतु भीष्म के पुत्र आगे चलकर राज्य छीन सकते हैं, तो भीष्म ने यह भी प्रतिज्ञा की कि वे जीवन भर विवाह नहीं करेंगे। इसी प्रतिज्ञा के अनुसार भीष्म जी कौरव सेना की रक्षा करने के लिए बाध्य थे, इसलिए विवश थे। दुर्योधन भी अपनी सेना में भीष्म जी के पराक्रम पर सबसे अधिक विश्वास करता है। भीष्म जी धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता थे, इसलिए उन्हें अच्छी प्रकार से ज्ञात था कि धर्म के पथ पर चलने वाले कौरवों का क्या होगा? विनाश होगा। तथा वे भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के रहस्य को भी जानते थे, यहां तक कि उन्हें अपनी मृत्यु का भी पता था कि उनकी मृत्यु किस प्रकार और कब होगी। भीष्म जी की अपने राज, अपने परिवार, अपने शरीर तथा भोगों के प्रति बिल्कुल भी आसक्ति नहीं थी। भीष्म जी सुख और दुख में समान थे और उनका नाम भगवान नाम की महिमा को पूर्ण रूप से जानने वाले 12 महाभागवत में भी आता है। जिसने अजामिल ने अपने पुत्र को नारायण कहकर बुलाया था तो उसकी रक्षा करने के लिए 4 विष्णु दूतों ने अजामिल को नरक में ले जाने के लिए आए हुए 3 यमदूतों को भगा दिया। यमदूतों ने जब ये घटना यमराज से बतलाई तो यमराज ने भगवान नाम की महिमा के इस रहस्य को जानने वाले 12 व्यक्तियों के नाम गिनाए थे। वे कौन कौन हैं? पहला ब्रह्मा जी, दूसरे नारद जी, तीसरे शंकर जी, चौथे 4 कुमारगण, 5वें भगवान कपिल देव, 6वें स्वयंभू मनु, 7वें प्रहलाद जी, 8वें जनक महाराज, 9वें भीष्म जी, 10वें बलि महाराज, 11वें सुखदेव गोस्वामी और 12वें यमराज स्वयं। इस बात से हम समझ सकते हैं कि भीष्म जी भगवान श्री कृष्ण के कितने महान भक्त थे। वे युद्ध करते समय भी अर्जुन के साथ रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण का दर्शन करके आह्लादित होते रहते थे। अपनी मृत्यु के समय पर भीष्म जी ने युधिष्ठिर महाराज को विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश दिया था। युधिष्ठिर जी ने जब प्रश्न किया कि सबसे बड़ा देवता कौन है, सबसे बड़ा धर्म क्या है तथा किसका जप करने से जीव जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है, तो भीष्म जी ने श्री कृष्ण को ही सबसे बड़ा देवता बतलाया तथा उनके नाम कीर्तन को ही सबसे बड़ा धर्म बतलाया तथा मुक्ति का साधन बतलाया। फिर श्री कृष्ण के गुण तथा लीलाओं पर आधारित उनके 1000 नामों का वर्णन करके भीष्म जी ने महान भक्त के रूप में अपनी कीर्ति स्थापित कर दी। अंत में ठीक है, तो ये जो है भीष्म जी के बारे में कुछ बातें हुई। और भी श्लोक है जिसमें दुर्योधन कह रहा है कि सब लोग, सब मेरी सेना के योद्धा भीष्म जी रक्षा करेंगे। दुर्योधन का कहना है कि उसकी सेना के जितने महान योद्धा हैं ये सभी मिलकर भीष्म की ही रक्षा करें। इस बात को दुर्योधन केवल द्रोणाचार्य के ही समक्ष नहीं बल्कि भीष्म जी और अन्य समस्त प्रमुख वीरों के समक्ष बोल रहा है कि भीष्म जी रक्षा करो सब लोग मिलकर के। ये बात सत्य है कि भीष्म जी का पराक्रम सर्वविदित है कि वे कभी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए। जब भीष्म जी ने जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा की थी उस समय देवताओं ने भीष्म जी को अपने से पराजित समझा था। देवता भी अपने को पराजित समझते हैं भीष्म जी से। क्यों क्यों पराजित समझते हैं?
भोगों में रहते हैं हमेशा।
उन पर उन्होंने आकाश से पुष्पों की वर्षा की थी तथा उनको भीष्म नाम दिया था। यहां पर एक प्रश्न है कि बहुत से लोग जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो फिर भीष्म जी के जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करने में क्या विशेषता है? तब देवताओं ने अपने को उनसे पराजित क्यों समझा था? इसका उत्तर यह है कि सामान्य रूप से जो लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे भोगों से सदा दूर रहते हैं। भोगों के बीच में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत कठिन है। देवतागण स्वर्ग में सदा भोगों के बीच में रहते हैं तथा वे जानते हैं कि भोगों के बीच में रहकर इंद्रियों को वश में करना कितना कठिन है। देवतागण कभी कभी प्रयास भी करते हैं परंतु फिर भी वे इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते हैं। परंतु भीष्म जी की प्रतिज्ञा अद्भुत थी। वे राज्य को छोड़कर वन में भी नहीं जाएंगे तथा जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। देवताओं की दृष्टि में यह प्रतिज्ञा अत्यंत दुष्कर अथवा भयंकर थी। वे इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोई व्यक्ति भोगों के बीच में रहकर भी ब्रह्मचर्य का जीवन पर्यंत पालन कर सकता है। इसलिए उन्होंने देवव्रत जो उनका पूर्व का नाम था को भीष्म नाम दिया तथा उनकी इस प्रकार की प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा अर्थात भयंकर प्रतिज्ञा का नाम दिया। हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि भीष्म एक महाभागवत है तथा भगवत गीता से हम जानते हैं कि 14वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो उनके अभिचारी भक्ति योग में लगे होते हैं वे 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। इस प्रकार जो भक्त तमोगुण रजोगुण तथा सत्वगुण इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं उनके ऊपर रजोगुण से उत्पन्न काम का प्रभाव कैसे पड़ सकता है? जब तक हम तमोगुण तथा रजोगुण से ऊपर नहीं उठ पाते तब तक हमें काम रूपी शत्रु से संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भीष्म जी ने अपनी आध्यात्मिक स्थिति के द्वारा देवताओं को पराजित किया था किसी प्रकार के युद्ध द्वारा नहीं। परंतु फिर भी सामान्य लोग इन बातों को ना समझकर यही चर्चा करते थे कि भीष्म जी युद्ध में देवताओं को भी परास्त कर सकते हैं। दुर्योधन जैसे असुर तो भीष्म जी की आध्यात्मिक स्थिति को कभी भी नहीं समझ सकते। दुर्योधन तो केवल इतना ही समझता था कि भीष्म जी तो देवताओं के लिए भी अजेय हैं और इस प्रकार वह भीष्म जी की युद्ध वीरता का उपयोग अपने भोगों की प्राप्ति में
लगाना चाहता
करना चाहता है। यद्यपि शास्त्र में कहा गया है कि विष्णु की सेवा से बढ़कर विष्णु के भक्त की सेवा है तो आप तो सोचोगे कि भीष्म की रक्षा करने के लिए सबको बोल रहा है तब तो वो तो जो ना विष्णु के भक्त की सेवा कर रहा है। अब यहां बड़ी समझने की बात है कि शास्त्र में कहा गया है कि भगवान से बढ़कर भगवान की भक्ति सेवा है वो तो भीष्म जी की सेवा में सब योद्धाओं को कह रहा है कि लगो इनकी रक्षा करो भीष्म जी की। यद्यपि शास्त्र में कहा गया है कि विष्णु की सेवा से बढ़कर विष्णु के भक्त की सेवा है। भीष्म जी विष्णु के महान भक्त हैं तथा दुर्योधन भीष्म जी की सब प्रकार से रक्षा करना चाहता है तो क्या यह कार्य विष्णु की सेवा या विष्णु की सेवा से भी बढ़कर है? नहीं। क्यों?
इंद्रिय तृप्ति करना चाहता
है। इंद्रिय तृप्ति के लिए उनकी सेवा कर रहा है, उनको प्रसन्न करने के लिए थोड़ी कर रहा है। मैं आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहा हूं, अपनी प्रसन्नता के लिए मैं आपकी सेवा कर रहा हूं तो आपकी सेवा थोड़ी होगी, है ना? तो ये चीज है क्योंकि दुर्योधन के हृदय में सेवा की भावना नहीं है। भीष्म जी के प्रति सेवा की भावना ना होकर दुर्योधन की भीष्म जी के प्रति स्वार्थ की भावना है। सेवा की भावना थोड़ी है, स्वार्थ की भावना है। दुर्योधन यही सोचता है कि यदि भीष्म जी की किसी प्रकार रक्षा की जाए तो मुझे पांडवों के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार पांडवगण जीवन पर्यंत कष्ट भोगेंगे, उसकी इसमें प्रसन्नता है कि पांडवों को जीवन पर्यंत कष्ट भोगना पड़े और मैं जीवन पर्यंत भोग भोगूं, इसलिए भीष्म की रक्षा करना चाहता है। यहां पर दुर्योधन की भावना भीष्म जी को प्रसन्न करने की नहीं है, वो जानता है कि भीष्म जी क्या चाहते हैं, भीष्म जी क्या चाहते थे दुर्योधन से, क्या चाहते थे कि वो पांडवों का राज्य वापस कर दें, पांडवों का सम्मान करें, है ना। लेकिन वो नहीं चाहता है, भीष्म जी को प्रसन्न नहीं करना चाहता है। दुर्योधन को पता है कि भीष्म जी का स्नेह पांडवों के प्रति है, तथा वे यही चाहते हैं कि दुर्योधन बिना युद्ध किए धर्म के अनुसार पांडवों का राज्य वापस कर दे। परंतु दुर्योधन किसी भी प्रकार से भीष्म जी की इच्छा के अनुसार आचरण नहीं करना चाहता, जानता है कि ये क्या चाहते हैं, लेकिन नहीं चाहता, वो वैसा काम नहीं करना चाहता है। यहां पर दुर्योधन के मन में भीष्म जी की रक्षा के प्रति चिंता हो रही है, क्योंकि वह भीष्म जी की वीरता के सहारे पांडवों को दुख के समुद्र में डालना चाहता है। इस प्रकार की भावना से दुर्योधन श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता। और कुरुवृद्ध एक श्लोक है गीता में, जहां भीष्म जी को कुरुवृद्ध कहा गया है, प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 12 है, कुरुवृद्धा पितामह, इसमें चर्चा हुई है। इस श्लोक में भीष्म जी को कुरुवृद्ध कहा गया है। वृद्ध शब्द के दो अर्थ हैं, वृद्ध शब्द के दो अर्थ हैं, पहला वयोवृद्ध और दूसरा ज्ञान वृद्ध। भीष्म जी कौरवों के मध्य दोनों प्रकार से वृद्ध हैं, भीष्म जी वयोवृद्ध भी हैं और ज्ञान वृद्ध भी हैं। भीष्म जी कौरवों के मध्य दोनों प्रकार से वृद्ध हैं, शारीरिक अवस्था में वृद्ध होने के कारण उन्हें पितामह भी कहा गया है, इसलिए यहां पर वृद्ध कहने का तात्पर्य विशेष रूप से ज्ञान वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है। हम जानते हैं कि भीष्म जी श्री कृष्ण की महिमा के ज्ञान में गंभीर रूप से निपुण हैं, परंतु दुर्योधन उनसे क्षणिक हर्ष की ही प्राप्ति कर रहा है, वो कृष्ण की महिमा का ज्ञान नहीं लेना चाहता है, वो तो क्षणिक हर्ष की प्राप्ति कर रहा है। वह श्री कृष्ण की महिमा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहा है, जबकि युद्ध के अंत में युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म जी से तब तक श्री कृष्ण की महिमा सुनी जब तक भीष्म जी की श्वास चलती रही। तो दुर्योधन जो है ना भीष्म जी से क्षणिक हर्ष प्राप्त कर रहा है, जबकि युधिष्ठिर जो है भीष्म जी से कृष्ण की महिमा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में भीष्म जी को प्रतापवान भी कहा गया है, इसका अर्थ है कि उन्हें मृत्यु का कोई भय क्या
नहीं,
मृत्यु का कोई भय नहीं है। भीष्म जी को मृत्यु का कोई भय नहीं है। भीष्म जी इतने अधिक निर्भय थे कि मृत्यु के पूर्व ही उन्होंने अपनी मृत्यु की तिथि और समय निश्चित कर दिया था, और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को बुलाकर दिखलाया था कि इस समय तुम सब लोग आना, अभी जाओ, अभी विश्राम कर लो, खाना सोना जो कुछ भी कर लो, उस समय आ जाना, एक निश्चित समय बता दिया। अधिक से अधिक संख्या में लोगों को बुलाकर दिखलाया था कि कृष्ण भक्त किस प्रकार निर्भयता पूर्वक अपने भौतिक शरीर का त्याग करके श्री कृष्ण की दिव्य सेवा प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद की भी तुलना भीष्म देव से की जाती है, क्योंकि उन्होंने भी श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते हुए तथा अपने शिष्यों से घिरे हुए अपने शरीर का त्याग किया था। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनके सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। इस प्रकार हम देखते हैं कि दुर्योधन भीष्म जी की उस प्रकार की दया नहीं प्राप्त कर सका जिस प्रकार की दया किसने प्राप्त की, युधिष्ठिर महाराज ने। तो इस तरह से हमने चर्चा की है, और अब मैं चाहूंगा जरूर कुछ आप लोगों की ओर से चर्चा हो या प्रश्न हो। हाँ प्रभु,
जो कुछ इनकी वस्तु के बारे में बताएंगे, देव वस्तु कैसे थे।
इनका प्रश्न है कि वो देव नाम के जो वसु उनके बारे में बताएंगे कैसे उसको साथ मिला। आठ वसु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए, इसलिए वहाँ आश्रम की शोभा देखने के लिए, तो अपनी अपनी पत्नियों के साथ में थे आठों वसु। तो वशिष्ठ जी उस समय अपने आश्रम में नहीं थे, तो वो आश्रम की शोभा देखते हुए और निकल गए, और सबसे पीछे रह गए वो सबसे छोटे देव नाम के वसु। तो अपनी पत्नी को दिखलाते हैं कि देख, ये वशिष्ठ जी की जो गाय है, नंदिनी, कामधेनु की पुत्री है नंदिनी जो गाय है, तो ये इसका दूध पीने से कोई व्यक्ति 10,000 हाथियों के समान बलवान हो जाता है। तो पत्नी कहती, तो चुरा लो। पत्नी में तो ये होती है कि कोई भी अधिक से अधिक चीजें जोड़ी जाए, इकट्ठे की, है ना। तो चुरा लो। तो पत्नी के अंदर चुरा लिया। तो फिर जो है वशिष्ठ जी जब आश्रम में आए तो देखा कि गाय नहीं है, तो अपनी उन्होंने योग दृष्टि से देखा तो पता चला कि 8 वसु आए थे, तो 8 वसुओं को साप दिया उन्होंने कि वे मनुष्य लोक में जन्म लेंगे, मनुष्य बनेंगे, है ना। जब 8 वसुओं को पता चला तो वो आए, बोले हमारी तो कोई गलती नहीं है, आपने साप दिया हमें, जिसकी गलती है तो आप उसको साप देते, हम 8ों को आपने साप क्यों दे दिया। तो वशिष्ठ जी बोले कि ठीक है, अब जो साप दिया है तो वो तो बदल नहीं सकता, लेकिन हाँ कुछ कम कर सकता हूँ, और वो यह है कि जल्दी वापस आ जाओगे अपने वसु के रूप में, तुम लोग मनुष्य लोक में जन्म लोगे लेकिन जल्दी वापस आ जाओगे, लेकिन हाँ ये जिसने चुराई है गाय तो वो ज्यादा समय तक रहेगा, क्योंकि पत्नी के कहने से चुराई है इसलिए पत्नी उसको नहीं मिलेगी जीवन भर। तो इस प्रकार से है जो है, जो 8 वसु थे, अब वो चिंता में पड़े कि हमको अब किसके यहाँ जन्म लेना है, कौन हमारे पिता बने, कौन माता बनेंगी, है ना। तो फिर जो है ना वो गंगा जी के पास आए, गंगा जी से प्रार्थना करते हैं, गंगा जी को साप मिल चुका है, है ना, और जो महाभिष नाम के राजा थे उनको भी साप मिल चुका है ब्रह्मलोक में कि वो जो है जन्म लेंगे शांतनु के रूप में, गंगा जी उनकी पत्नी बनेंगी। तो गंगा जी के पास आए, बोले माता अब तुम जो है ना हमारे ऊपर कृपा करो, तुमको भी साप मिला है कि तुम शांतनु के रूप में जो महाभिष नाम के राजा हैं उनकी पत्नी बनोगी, तो तुम हमें जन्म दो और जल्दी ही हमको मुक्त करो, हमें हमारे लोक में वापस भेज दो। तो गंगा जी ने कहा ठीक है, तो गंगा जी तैयार हो गए। तो इस तरह से जो 8 वसु थे वो एक एक करके गंगा जी से जन्म लेते हैं, और गंगा जी ने फिर इसी कारण से कि चूंकि वे 8 वसु से बात हो चुकी है उनकी पहले से ही, और वो जन्म दे करके उनको गंगा जल में डुबोएंगी, उनको वसु लोक में पहुंचाएंगी, तो शांतनु से जब विवाह का प्रस्ताव हुआ उनका, तो उन्होंने पहले से ही शर्त रखी कि मैं जो कुछ भी करूं अपनी इच्छा के अनुसार, आप कुछ भी विरोध नहीं करना है, और जैसे ही आपने विरोध किया तो मैं छोड़ के चल दूंगी। तो पहले गंगा जी मिली थी शांतनु के पिता से, प्रतीप, शांतनु के पिता थे प्रतीप, तो उनसे जो है बात हुई थी, तो प्रतीप ने कहा कि तुम मेरी पुत्र वधु बनो, तो बोली कि मैं मतलब पुत्र वधु बनूंगी लेकिन एक शर्त है मेरी। तो प्रतीप जब शरीर त्याग रहे थे तो शांतनु को समझा दिया कि एक जो है ना सुंदर स्त्री तुमको मिलेगी जंगल में, और तुम उसका बिना नाम पूछे, बिना उसका वंश पूछे कि किस पिता की पुत्री है, और बिना उस हर प्रकार की शर्त मान करके उससे तुम विवाह कर लेना। तो शांतनु ने पूछे नहीं कि इनका क्या नाम है और किस वंश की स्त्री है ये, हैं, और उसने कहा कि मैं जो भी करूं अपनी मर्जी से, आप विरोध नहीं करना, विरोध किया तो मैं चल दूंगी, चली जाऊंगी। तो उन्होंने बिना विरोध किए मतलब सहन किया, और गंगा जी क्या करती हैं, जैसे पुत्र पैदा करती हैं वहां महल में तो बहुत उत्सव मनाया जा रहा है, राजा के घर में पुत्र हो तो कितना बड़ा उत्सव होता है, हैं? और ये क्या करती हैं, गंगा जी में जल में जाके डुबो दिया, और कोई कुछ प्रश्न नहीं पूछ सकता है, कितनी तनाव की स्थिति पैदा हो गई कि किसी की हिम्मत नहीं कुछ पूछने की, क्या कर रही है। और शांतनु जो है चिंतित, उनको पुत्र चाहिए, और एक पुत्र, दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र, 7 पुत्र ऐसे ही पानी में डुबो दिए, गंगा जी में डुबो दिए इन्होंने, और किसी की हिम्मत नहीं। फिर 8वां जब पुत्र पैदा हुआ तो शांतनु ने अब कड़ा हृदय कर लिया कि अब चाहे चली जाए, मैं नहीं ऐसा करने दूंगा। तो फिर डांट करके बोले कि तू किस वंश की है बता, तू सर्पिणी जैसे अपने बच्चों को पैदा करके खा जाती है, ऐसे तू जो है ना कर रही आचरण, ये क्यों कर रही है ऐसा तुम आचरण। तो बड़े कठोर शब्द बोले, तो गंगा जी बोली बस महाराज हरे कृष्णा ये पुत्र आपका है, और बस मैं चली। तो गंगा जी चल गई इस तरह से जो है, और फिर बता दिया उन्होंने कि मैं जो है ना महर्षि जहनू की कन्या हूं, जहनवी नाम है ना, जहनू की कन्या, जहनू ऋषि पिए गए थे गंगा जी को, तो भागीरथी भी इनका नाम है, जहनवी भी नाम है, तो जहन है, तो चूंकि अपने शरीर से उत्पन्न किया था इसलिए जहनवी कहलाती हैं। तो इस तरह से जो है उन्होंने भीष्म जी को दे दिया शांतनु के हाथ में है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? एक दो, अच्छा दो लोग पहले आप। हाँ, आदर भाव तेरो भाव। हाँ, वो कैसे? इन्होंने प्रश्न किया है कि वैष्णवों का आदर भाव तेरो भाव दोनों पवित्र होता है, वो कैसे? क्योंकि तेरो भाव जब होता है उनका तो भगवान की सेवा में जाते हैं, है कि नहीं? और आदर भाव होता है तो पृथ्वी को पवित्र करते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए जो है दोनों जो है ना उनके दिव्य हैं, आदर भाव तेरो भाव दोनों दिव्य हैं वैष्णवों के। और वैसे आदर भाव तेरो भाव में कोई अंतर भी नहीं है, जीव व मरो वा, चाहे जिंदा रहो चाहे मरो, कोई अंतर नहीं है। वैष्णव का शरीर बदलता है लेकिन उसका कार्य नहीं बदलता, उसका एकमात्र कार्य क्या है? कृष्ण की सेवा करना। तो चाहे वो जिंदा रहे चाहे मरे, उससे उसके कार्य में कोई अंतर नहीं पड़ता, शरीर बदलता है लेकिन कार्य नहीं बदलता उसका। आपका प्रश्न, अच्छा सॉरी, पहले आपने हाथ उठाया था, किसने हाथ उठाया था? आपने? अच्छा हाँ,
जब पांडवों ने बाणों से छेदा तो फिर उतने बाण उनके लगने की क्या कारण?
उनका प्रश्न है कि जब भीष्म जी के शरीर को अर्जुन ने छेदा बाणों से, इतने बाण लगने के क्या कारण थे? कई कारण है, एक कारण नहीं है। अभी मैं सब कारण की चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत से कारण है। एक कारण ये भी है कि भगवान कृष्ण दिखलाना चाहते हैं कि एक भक्त जो है ना शरीर में अपनी पहचान नहीं करता है, और इस प्रकार से वो जो है देहात्म बुद्धि से मुक्त रहता है, और शरीर की इतनी हालत खराब होने के बावजूद भी उसका जो मन है बुद्धि है वो पूरी तरह से कार्य करते हैं, है कि नहीं? तो और भी कई कारण है लेकिन मैं अभी सब कारण की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आपका प्रश्न, वसु किसे कहते हैं? वसु जो है देवताओं में एक विशेष जो है जाति है वसु, और इनका क्या कार्य है मैं ठीक से नहीं बता सकता हूँ, देखना पड़ेगा कि इनका क्या कार्य होता है वसुओं का। लेकिन वसु जो है कश्यप जी की एक वसु नाम की पत्नी है, उससे 8 पुत्र हुए तो वो वसु कहलाए, ठीक है ना? इन देवताओं की सृष्टि में ही ये वसु भी आते हैं। 84 लाख प्रकार के जो योनियाँ हैं उनमें जो है ना वसु हैं और साध्य हैं और जो है किन्नर हैं गंधर्व हैं, ये अलग अलग प्रकार के हैं। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है भीष्म देव के आदर भाव का, और हम प्रार्थना करते हैं भीष्म देव से कि वो हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हमारा मन श्री श्री राधा पार्थार्थ के चरण कमलों में स्थिर हो जाए हैं, और सुदृढ़ भक्ति प्राप्त हो। धन्यवाद। हरे कृष्णा। भीष्मदेव आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थार्थ